हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद दसवां अध्याय श्लोक संख्या 24 एंड 25। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु अर्गारंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मायं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीताम्भरधारुण बिम्बफलधरोष्ठा पुरेन्द्रसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति देवयेस्तवे वेदेसाङ्गपत्क्रमोपनिषदि गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विधो सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीयुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंध दसवां अध्याय जिसका शीर्षक है द्वारिका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से विदा लेकर द्वारिका की ओर रवाना हो रहे हैं, उस समय द्वारिका के महलों के हस्तिनापुर के जो महलों के ऊपर कुल स्त्रियां खड़ी हैं वो भगवान के विषय में क्या बोल रही हैं, तो उनका ही उद्गार हम पढ़ रहे हैं। आज श्लोक नंबर 24 में अत्यंत ही सुंदर रीति से वो भगवान के पुण्य श्लोक का वर्णन कर रहे हैं कि जो भगवान हैं उनका वेदों में किस तरह से बखान किया गया है। क्योंकि अब पहले हम लोगों ने कल पढ़ा कि वो जा रहे थे तो उसके कारण वो बहुत ज्यादा दुखी थी और आपस में बातें कर रही थी कि वो सोच रही थी कि उनका दर्शन नहीं पाएंगे अब हम, तो हमारी बुद्धि का लोप हो जाएगा। मतलब वो ये कह रही थी कि भगवान हमें छोड़कर जा रहे हैं तो हमारी बुद्धि नष्ट हो जाएगी, अर्थात वो ये सोच रही थी कि हम कैसे रहेंगी, भगवान के बगैर तो जीना संभव नहीं है, तो हम कैसे जिएंगी। तो वास्तव में भक्तों ये भगवान का आकर्षण है कि जिनको भी भगवान के नाम गुण लीला सौंदर्य का एक बार स्वाद, एक बार जो चख लेता है तो उसको ऐसा ही लगता है कि अब इसके बगैर रहना असहाय है। जैसे कि संसार में भी हम देखते हैं कि जब किसी से आकर्षण उत्पन्न होता है, हालांकि ये जो देह है उसके अंदर कुछ प्रेम करने योग्य नहीं है। इस संसार में सब कुछ क्या है, अनित्यम असुखम। कृष्ण कहते हैं संसार में अनित्यम असुखम लोकम, जिस लोक में आप रह रहे हो उसमें ना कुछ नित्य है, ना कुछ शाश्वत है और ना ही कुछ आनंद प्रदान करने वाला है। अनित्यम असुखम लोकम, इस संसार में अनित्य है सब कुछ, कुछ भी इटर्नल नहीं है सिवाय तुम्हारे। जीव तुम इटर्नल हो तो न अल्पे सुखम, इस संसार में क्योंकि कुछ नित्य नहीं है, कुछ सुखमय नहीं है, तो तुम यहाँ पर आनंद मत ढूंढो। लेकिन फिर भी जीव का भौतिक वस्तुओं की ओर कितना आकर्षण हो जाता है, क्योंकि इनके अंदर आध्यात्मिक सफुलिंग है, कृष्ण की चेतना है। तो संसार की हर एक चीज हमें अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, लेकिन एक बार जिसका आकर्षण भगवान की ओर निर्माण हो जाता है, तो भगवद गीता में भगवान कहते हैं रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जिसको वास्तविक टेस्ट एक बार आ जाता है तो उसको भौतिक वस्तुएं जो हैं वो आनंदित नहीं करती हैं, और फिर वो छटपटा उठता है उस आनंद को पुनः पुनः प्राप्त करने के लिए। तो यही कुल स्त्रियां कह रही थी कि हमें तो उधर ही जाना चाहिए जहां पर वो जा रहे हैं, उनके साथ रहना चाहिए, उनसे दूर हो गए तो फिर जीना संभव नहीं होगा। और आज कह रहे हैं श्लोक नंबर 24 में कि मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए, कुल स्त्रियां कह रही हैं सवा अयम सख्य अनुगीत सत्कथो वेदेशु गुहेशु च गुह्यवादिभि यैकैषो जगदात्मलीलया सृजत्यवत्यत्ति न तत्र सच्यते सवा अयम स यनुहीत सत्कृथा वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः यैकैषो जगदात्मलीलया सृजत्यवत्यत्ति न तत्र सच्यते स वा अयम् सख्यनुगीत सत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः यैकैषो जगदात्मलीलया सृजत्यवत्यत्ति न तत्र सच्यते स वा अयम् सख्यनुगीत सत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिभिः यैकैषो जगदात्मलीलया सृजत्यवत्यत्ति न तत्र सच्यते। शब्दात् सवै सवा अयम सख्यनु, सवा मतलब ये वही है, ये जो सामने खड़े कृष्ण है ये वही तो है अरे सखी, ये वही पुरुष हैं जिनकी गीत सत्कथ हो, जिनकी सत्य कथाओं का वर्णन वेदेशु गुह्येचु चह गुह्यवादिब, वेदों के अंदर और वेदों के जो बहुत ही गुह्यता, जो वेदों का गुह्य रहस्य है, वो इन्हीं महापुरुष को ही, जो सामने हमारे भगवान साक्षात्कार खड़े हैं, वास्तव में वेदों में जो कुछ वर्णन किया गया है इनको समझने के लिए तो कहा गया है वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादि भी, यानी कि जो शास्त्र हैं सारे के सारे वेद हैं और वेदों के जो अंतरंग शास्त्र हैं वो सब कृष्ण के विषय में ही हैं। वेद शास्त्रों में जो भी बातें लिखी हुई हैं वो सब की सब कृष्ण, जो भी मतलब चाहे ब्रह्म के लिए लिखी हुई है चाहे परमात्मा के लिए लिखी हुई है, वो डायरेक्ट इन्हीं पुरुष के लिए है। और साथ में कहा सत कथो, ये जो कुछ भी है वो सब सत्य है भगवान के लिए। वेद जो कुछ बता रहे हैं, वो जितनी भी वो गुह्य बातें हैं, जो टॉप सीक्रेट्स भगवान के विषय में जो शास्त्रों में कहे गए हैं, वो सब बिल्कुल सत्य हैं। सवा अयम सत यनु गीत सत कथो, सब कुछ वेदेशु गुह्येषु गुह्येषु च गुह्यवादि भी, मतलब सत्य कैसे हैं कि सत्य का क्या मतलब होता है, जो तीनों काल में एक समान हो, बिल्कुल सत्य हो, मतलब जिसका कभी खंडन नहीं होगा। वेद ने कह दिया कि भगवान जो है वो करोड़ों करोड़ों काम देवों से भी अधिक सुंदर है, तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कृष्ण कितने ही पुराने क्यों ना, शास्त्र कहता है कि आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, भले ही वो आदि पुरुष है परंतु फिर भी वो नव यौवन की तरह दिखते हैं, मतलब भगवान के रूप का, भगवान के ज्ञान का, भगवान के सौंदर्य का, भगवान के बल का, भगवान के यश का, भगवान के ऐश्वर्य का कभी भी खंडन नहीं होता, कभी भी उसके अंदर विक्षेप नहीं होता, कभी भी उसके अंदर कमी नहीं आती, वो एज इट इज रहता है, नित्य होता है इस संसार में। और किसी का भी चाहे ज्ञान हो चाहे बल हो चाहे ऐश्वर्य हो, वो कभी भी सेम नहीं रहता। जैसे 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 जीव बढ़ता जाता है, बुद्धि बुढ़ापे में नष्ट हो जाती है, बल खत्म हो जाता है, तो अगर हमारे बारे में या संसार के किसी भी जीव के बारे में कोई शास्त्र लिखा जाए कि भाई उसके अंदर इतनी सुंदरता है, इतना बल है, तो वो क्या है, सत्य कथा नहीं है, वो तो 100% झूठ है, क्योंकि एक समय में हमारे पास वो पावर होता है और जो भी होता है, चाहे बल हो चाहे धन हो चाहे सौंदर्य हो चाहे ऐश्वर्य हो, जो भी है वो समय के साथ नष्ट हो जाता है। केवल कृष्ण ही एक ऐसे हैं जिनके बारे में इटर्नल बोला जा सकता है कि उनका चाहे जो भी उनसे रिलेटेड वस्तु है वो इटर्नल है, वो कभी भी कम नहीं होती है, वो एज इट इज बने रहते हैं। तो ये स्त्रियां कह रही हैं वेदेषु गुह्येषु, मतलब वेदों में भी इनकी विषय में बताया गया है, मगर वो बहुत सीक्रेटली बताया गया है, वेद रहस्यमय है, इसीलिए बहिर्मुख लोगों को समझ में नहीं आते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो वेदों का अध्ययन करते हैं और फिर कहते हैं कि वेद में तो कृष्ण के विषय में कुछ लिखा ही नहीं गया, हालांकि भगवान स्वयं कहते हैं एक एक अक्षर में केवल कृष्ण का वर्णन किया गया है वेदों में। भगवान कहते हैं वेदेषु सर्वे अहमेव वेद्यो, वेदों के एक एक अक्षर में यदि कुछ जानने लायक है तो केवल मैं ही हूं। यदि उनसे पूछा जाए कि भाई आप ही हो, इसका क्या प्रमाण है, तो भगवान कहते हैं वेद कृत, वही तो मैं ही हूं, है ना। भगवान कहते हैं वेदेषु सर्वेषु अहमेव वेद्यः वेदांत कृत्वेद विदेव चाहम, कि वेदों के अंदर जो कुछ भी समझने के लिए है अहमेव वेद्यः, मेरे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं वेदों में, और वेदांत कृत्वेद वेदो, वेदांत का रचयिता, वेदों को लिखने वाला प्लस वेदों को समझने वाला केवल मैं ही हूँ। तो वेदों में बहुत गुह्य तरीके से हर चीज बताई गई है, और जो उसको सिखाने वाले जो दूसरे लोग हैं च गुह्यवादी भी, वो भी बहुत ज्यादा सीक्रेटली, यानी गुह्य भक्त जो है वो भी भगवान के विषय में बहुत सीक्रेट बातें करते हैं। इतना गुह्यतम ये रहस्य भगवान का है, भगवान के ऐश्वर्य का, भगवान की भगवत्ता का, कि साधारण जीव जो है वो समझ नहीं पाते। इसलिए भगवान कहते हैं अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। जो मूढ़ लोग हैं, जो बेवकूफ हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, वे जानते नहीं, अवजानन्ति मामूढ़ा, मुझे नहीं समझ सकते, भले कितना ही शास्त्र पढ़ लें, लेकिन क्योंकि उनके हृदय में मेरे लिए कोई भक्ति नहीं है तो वो मुझे नहीं समझ सकते। और वो सोचते हैं कि जो मैं कृष्ण हूँ, अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम्, जब मैं मनुष्य देह लेकर संसार में आता हूँ, परम भावम अजानन्तो, वो मेरे परम भाव को नहीं जान सकते और मेरे विषय में अपना मनमाना वर्णन करते हैं, शास्त्र को वो समझ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिवः। तो किस तरह से वेदों में गुह्य भगवान का वर्णन किया गया है, उसका अगर एक हम उदाहरण लें तो वेदों में कहा गया है कि भगवान का कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई आकार नहीं, मतलब भगवान को बताया गया कि भगवान निराकार है। लेकिन साथ में वही शास्त्र, वही वेद कहते हैं कि भगवान का सौंदर्य ऐसा है कि वो करोड़ों करोड़ों कंदर्पों को भी, करोड़ों करोड़ों कामदेवों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। इसे भगवान का नाम मदन मोहन है। मदन कहते हैं कामदेव को और मोहित करने वाले को बोलते हैं मोहन। तो जब एक किसी का रूप ही नहीं है तो भला उसके रूप से कोई मोहित कैसे हो सकता है ना। तो ये भगवान के विषय में वेदों में कितना अचंभ, इतना आश्चर्यचकित वक्ता, तो वो वास्तव में हमें भक्त बताते, जो संत होते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन को, ये तुम्हारी समझ में इतना आसानी से स्वतः नहीं आएगा, तो क्या करो, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शन। जिसने तत्व से देखा है, जो वास्तविकता को समझता है, उसके पास जाओ, विनम्रता से पूछो, वही तुम्हें बता सकते हैं। तो क्या अर्थ है भगवान का स्वरूप नहीं, इसका अर्थ यह है कि उनका कोई प्राकृत स्वरूप नहीं है, उनकी हमारी तरह ये प्राकृतिक देह नहीं है। भगवान चिन्मय है, भगवान के अंदर देह और आत्मा का भेद नहीं है, भगवान सच्चित आनंद है। तो वेद जो है वो हमें इस तरह से बताते, लेकिन जो बेवकूफ होते हैं वो इसी वेद से ये समझते हैं, उन वेद को पढ़ने के बाद उनको ये समझ में आता है कि भगवान की कोई शक्ल नहीं, भगवान का कोई आकार नहीं, भगवान का कोई स्वरूप नहीं। स्वरूप भगवान का है परंतु उनका कोई भौतिक वस्तुओं से बना हुआ स्वरूप नहीं है, उनका स्वरूप भी आध्यात्मिक है। भगवान की देह हमें, भगवान के आत्मा में कोई अंतर नहीं है, भगवान जो है वो चिन्मयी है। तो यहाँ आगे कहते हैं कि यह एक ईशो जगदात्मलीलया, यह एक ईशो, ईशो कहते हैं ईश्वर को, माना वही एकमात्र ईश्वर है। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम इनके दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि ये तो वेदों के द्वारा जानने योग्य केवल यही है, वेदों के अंदर जिनकी प्रशंसा की गई है वो यही है, और एकमात्र यही तो परम नियंता है, यही तो ईश्वर है। और जगत आत्मलीलया, वो क्या करते हैं, परमात्मा स्वरूप में इस पूरी सृष्टि को क्या करते हैं, लीलाओं, सृष्टि के अंदर अपनी लीलाओं का प्राकट्य करते हैं। कैसे करते हैं, सृजत्यवत्यति न तत्र सज्जते, सृजत्य यानी कि वो सृजन करते हैं, और अवत्यति मतलब पालन करते हैं तथा संहार करते हैं। अवति का मतलब होता है उसका पालन करते हैं और संहार करते हैं, सृजत्यवत्यति न तत्र सब, लेकिन फिर भी न तत्र सज्जते, न तत्र मतलब कभी भी नहीं, तत्र मतलब उसमें, उसमें किसमें, वो सृष्टि जिसका भगवान सृजन करते हैं, भगवान पालन करते हैं, भगवान संहार करते हैं, उसमें कभी भी न सज्जते, न तत्र सज्जते मतलब उसके अंदर कभी भी आसक्ति नहीं है उनकी। कितना भगवान का वैराग्य, ये वैराग्य भगवान की षडेश्वरियों में से एक। हम देखो संसार में कोई भी एक प्राणी किसी कोई एक चीज को सृजन करता है, कुछ बनाता है या कोई संतान उत्पन्न करता है, तो उसके अंदर उसकी कितनी आसक्ति होती है, कितना उसके अंदर मोह होता है, ये मेरा है, इसको कुछ नहीं होना चाहिए, मेरा है करके पूरा जीवन अपना उसके लिए ही ना डेडिकेट कर देते हैं। लेकिन भगवान क्या करते हैं, सृजत्यवति अवति, मतलब अवति अति, उसका पालन भी करते हैं लेकिन साथ साथ में उसका संहार भी कर देते हैं। जैसे कितने कितने करोड़ों लोग यादव थे, भगवान ने उन सबको सृजन किया। भगवान की 16,108 पत्नियां थी, उनमें से अनेक अनेक उनकी संतानें हुई और उनकी भी संतानें हुई, तो इतना बड़ा यदुकुल हो गया और भगवान ने अपनी एक योजना से सबका सर्वनाश करा दिया। वो पौत्र थे भगवान के, लेकिन भगवान के अंदर, भगवान के हृदय में उनके प्रति कोई आसक्ति नहीं थी। उसी तरह से हम सब जीव भगवान की संतान है और भगवान सृजन करते हैं, पालन करते हैं और प्रलय कर देते हैं। तो यहाँ पर ये भगवान की पुण्य श्लोकता का वर्णन कर रही हैं गोपियां, कहती हैं अनुवाद, हे सखियों, यहाँ पर वही भगवान है जिनकी आकर्षक तथा गोपनीय लीलाओं का वर्णन बड़े बड़े भक्तों द्वारा वैदिक साहित्यों के गुह्यतम अंशों में हुआ है। वे ही भौतिक जगत की सृष्टि करने वाले, पालन करने वाले तथा संहार करने वाले हैं, फिर भी वे उससे अप्रभावित रहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि सारा वैदिक साहित्य भगवान श्री कृष्ण की महानता का यशोगान करता है। वेदेश्य सर्वे अहमेव वेद्यो, जितने भी वेद हैं उसमें केवल भगवान को ही समझना है उनके द्वारा। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यहाँ पर भागवत में भी इसकी पुष्टि की गई है, वेदों की अनेक शाखाएं तथा उपशाखाएं हैं और इसका विस्तार महान भक्तों तथा यथा व्यास, नारद, सुखदेव गोस्वामी, कुमारगण, कपिल, प्रहलाद, जनक, बलि तथा यमराज जैसे भगवान के शक्तियाविश अवतारों द्वारा हुआ है। लेकिन उनकी लीलाओं का गुह्य अंश गुह्य भक्त सुखदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवतम में विशेष रूप से वर्णित हुआ है। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वेदों को तो बहुत सारे भक्तों ने, जैसे यहाँ पर 12 महाजनों के विषय में बता रहे हैं, व्यास, नारद, सुखदेव गोस्वामी, कुमारगण, कपिल, प्रहलाद, जनक, बलि और यमराज, और इन्होंने बहुत बहुत बताया वेदों के विषय में, विस्तार किया है। नारद मुनि ने, व्यास देव ने, कुमारगण ने, कपिल मुनि ने, प्रहलाद ने, जनक ने, बलि ने, यमराज ने बताया वेदों के विषय में, परंतु वास्तविक में जो भगवान की लीलाएं हैं, जो वो लीलाओं का जो गुह्य अंश है, क्या गुह्य अंश है कि भगवान किस प्रकार अपने भक्तों के साथ स्नेह करते हैं, कैसे भगवान का अपने भक्तों के साथ स्नेह का आदान प्रदान होता है, वो तो ये गुह्य भक्त जो है सुखदेव गोस्वामी, गुह्य भक्त अर्थात ये भगवान के अंतरंग पार्षद हैं, श्रीमती राधा रानी की तोता हैं सुखदेव गोस्वामी, और उन्हीं के द्वारा श्रीमद् भागवतम में विशेष रूप से भगवान का ये लीलाओं का गुह्य अंश वर्णित हुआ है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, वेदांत सूत्र या उपनिषदों में उनकी लीलाओं के गुह्य अंशों का संकेत मात्र हुआ है। बाकी जितने भी वेद हैं या फिर दूसरे जितने भी उपनिषद हैं, उसमें भी भगवान की लीलाओं के विषय में बताया, लेकिन इतना खुलकर, मतलब इतना हर चीज को इतना सुंदरता के साथ नहीं बताया गया कि कोई भी समझ सकता है। श्रीमद् भागवतम महापुराण में इतना रस है और भागवतम में भगवान की लीलाओं को इतना सुंदरता के साथ, विस्तार के साथ बखान किया गया है कि कोई किसी को भी आपत्ति नहीं होती है उसको समझने में। लेकिन दूसरे जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी वेद हैं, उनमें भगवान की लीलाओं को बहुत ही गुह्य तरीके से बताया गया, संकेत है, केवल संकेत मात्र में कृष्ण को बताया गया है। इसीलिए क्या होता है, शास्त्र कहता है, मुह्यन्ति यत् सूरयो, बड़े बड़े सूर्य भी, बड़े बड़े देवता भी, जो वेदों के जानने वाले ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए,
है ना, वो ब्रह्मा जी जिनके हृदय में स्वयं तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय, स्वयं भगवान ने ज्ञान दिया था, वो भी भगवान की लीला को देखकर मोहित हो गए। इंद्र आए वो भी मोहित हो गए। तो हम जैसे साधारण प्राणियों की क्या बात की जाए, है ना। तो फिर हमारा मोहित हो जाना भगवान की लीलाओं को देखकर कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जो श्रीमद् भागवतम महापुराण का एक बार आस्वादन करता है तो भगवान के दिव्य रहस्यों को, जो गुह्य भगवान की लीला है, उन अंशों को, क्योंकि शुकदेव गोस्वामी ने बहुत ही विस्तृत रूप से बताया है, तो उसको समझने का अधिकारी बन जाता है। ऐसे वैदिक साहित्य में जैसे कि उपनिषदों में भगवान के स्वरूप को स्पष्ट रूप से संसारी अवधारणा से पृथक दिखाया गया है, उनकी पहचान पूर्ण रूप से आध्यात्मिक होने के कारण उनके रूप नाम गुण साज सामान इत्यादि को विस्तार पूर्वक पदार्थ से पृथक दिखाया गया। अभी वेदों में क्या बताया गया, क्योंकि भगवान निराकार हैं तो उनके नाम गुण रूप लीलाओं को बिल्कुल क्या बताया गया, पदार्थ से पृथक बताया गया कि वो निराकार हैं, उनके साथ उनका कुछ भी है नहीं, उनका ना नाम है ना रूप है ना रंग है, वो तो संसारी भौतिक आवरण से पृथक है, आध्यात्मिक है, नितांत आध्यात्मिक है। श्री प्रभुपाद जी बोलते इसीलिए, क्योंकि वेदों में इतना सीक्रेटली बताया गया है तो समझ में आता नहीं लोगों को, इसलिए कभी कभी अल्प बुद्धि वाले उन्हें निराकार मानने का भ्रम कर बैठते हैं। अब वो निराकार नहीं बता रहे, वो ये बता रहा है, वेद क्या बता रहा है कि भगवान का स्वरूप भी आध्यात्मिक है, भगवान का जो स्वरूप है, भगवान का जो रूप है, नाम है, गुण है, लीला है, वो सब कुछ सब आध्यात्मिक है, उनमें भौतिक वस्तु का या भौतिक अवधान का रंच मात्र भी नहीं है। तो वो ये समझ बैठते कि शायद उनका कोई स्वरूप है ही नहीं, आध्यात्म तो दिखेगा नहीं, निराकार होंगे शायद। लेकिन श्री प्रभुपाद जी कहते हैं लेकिन वास्तव में वे परम पुरुष भगवान हैं। परम पुरुष भगवान है मतलब उनका स्वरूप है, वो पुरुष है, उनका नाम है, गुण है, लीलाएं हैं, वो कार्य करते हैं, और परमात्मा या निराकार ब्रह्म के रूप में उनकी अभिव्यक्ति केवल आंशिक स्वरूप से होती है। भले ही परमात्मा और ब्रह्म निराकार ब्रह्म भी भगवान के ही स्वरूप हैं, परंतु वो केवल अंश रूप हैं। लेकिन वास्तव में भगवान क्या हैं? वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शक्यते। जो वास्तव में तत्वदृष्टि है वो भगवान के विषय में बताते हैं कि वो वास्तव में तत्वदर्शी क्या बताते हैं कि भगवान भगवान भी है, परमात्मा भी है और निराकार भी है, लेकिन उनका वास्तविक रूप क्या है? भगवान, क्योंकि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो कृष्ण ही है, वो वही निराकार है। भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि मैं परमात्मा रूप से तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ हूँ, क्या करता हूँ? उपदृष्टा अनुमंता से भर्ता भोक्ता महेश्वरम परमात्मेति आप्तुक, मैं परमात्मा बनकर तुम्हारे हृदय में बैठा हूँ। हूँ कौन? हूँ तो मैं कृष्ण, लेकिन हृदय के अंदर मैं बैठा हुआ होता हूँ। मैं ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, और भगवान भी बता दें कि ईश्वर कौन है? अहम सर्वस्य प्रभु, मैं हूँ वो ईश्वर। आगे भगवान कहते हैं ब्रह्मण्यो ही प्रतिष्ठा हम, जो ब्रह्म है उसकी प्रतिष्ठा मैंने की है। तो वास्तव में वो कृष्ण है, वास्तव में वो परम पुरुष भगवान है, लेकिन बाकी जितने भी रूप है, चाहे परमात्मा हो चाहे निराकार ब्रह्म हो, वो भगवान की आंशिक अभिव्यक्तियां हैं। तो यहाँ पर बता रही है ये जो कुल स्त्रियां हैं कि वही है, ये जो सामने हमारे खड़े हैं ना कृष्ण, जो जा रहे हैं यहाँ छोड़कर हमको, वही इस संसार का सृजन करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, परंतु न तत्र सज्जते, इसके अंदर बिल्कुल भी आसक्त नहीं होते। अभी आगे वो हमें बताएंगी कि भगवान इस संसार में अवतार क्यों लेते हैं, यहाँ अपने धाम से बार बार संसार में क्यों आते हैं, और किस प्रकार से वो उनके अंदर अपने भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं, धन बल सौंदर्य इत्यादि का प्रदर्शन करते हैं। तो वो सब लीलाएं हम धीरे धीरे कल से पढ़ेंगे। कृपया मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी साधना और सेवा को अच्छे तरीके से कर सकूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।